ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री से संसद में उठे प्रश्नों का जवाब देने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने आज भी सदन की कार्यवाही की बाधित। प्रधानमंत्री जल्द ही संसद में उपस्थित होकर जवाब देने की बात की। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सांसदों को दी जानकारी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ की सामूहिक चर्चा। नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री का कथन। और भारत मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने में 5 मजदूरों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक विपक्षी दलों के बार बार के अवरोध के बीच संचालित हुई, जिसमें प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन विधेयक 2083 और मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक 2083 पारित किए गए। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सोविता गौतम द्वारा प्रस्तुत विधेयकों को धारा दर धारा चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी तरह बैठक में पर्यटन विधेयक 2082 पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर सैद्धांतिक चर्चा भी हुई। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़कराज पौडेल ने पर्यटन विधेयक 2082 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर हुई सैद्धांतिक चर्चा में भाग लेते हुए सांसदों ने पर्यटन क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास के लिए नए पर्यटन स्थलों की खोज, पर्यटन व्यवसाय को जनजीवन से जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक हस्तांतरण को साथ साथ आगे बढ़ाने जैसे विषय पर सुझाव दिए। इससे पहले प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से संसद में उठे सवालों का जवाब देने और संसद के प्रति जवाबदेह बनने की मांग करते हुए बैठक में अवरोध किया था। विपक्षी दलों के अवरोध के बीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़कराज पौडेल ने पर्यटन विधेयक 2082 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर सैद्धांतिक चर्चा के दौरान भी विपक्षी दलों का अवरोध जारी रहने पर सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। दूसरी बार बैठक शुरू होने पर भी विपक्षी दलों का अवरोध जारी रहा। इस दौरान राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतक कविंद्र बुरला कोटी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह एक सप्ताह के भीतर सदन में उपस्थित होंगे। विपक्षी सांसदों ने सभामुख से प्रधानमंत्री को संसद में उपस्थित होने का रूलिंग देने की मांग की। इसके बाद सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री शाह जल्द ही संसद में उपस्थित होकर उठे सवालों का जवाब देने की तैयारी में है। इससे पहले प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने देश के समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल 13 गते बुधवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार नेपाली नागरिकों के दैनिक जीवन स्तर को वास्तविक और दिखाई देने वाले तरीके से सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में काठमांडू और नई दिल्ली स्थित यूरोपीय संघ तथा उसके सदस्य देशों के राजदूतों और काठमांडू स्थित अन्य देशों के राजदूतों के साथ हुई संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि वो वर्तमान समय की आवश्यकता और अपने ऊपर सौंपी गई गंभीर जिम्मेदारी को पूरी तरह समझते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि नेपाल में हाल ही में संपन्न चुनावों के परिणाम ने सुशासन और समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई सरकार बनने के बावजूद नीतिगत निरंतरता बनी रहेगी। सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही जनता के लिए नए अवसर पैदा करने, वैश्विक बाजार में लाभ उठाने, बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को और सरल बनाने, नवाचार को प्रोत्साहन देने तथा सतत विकास हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री शाह ने ये भी स्पष्ट किया कि नेपाल संतुलित और व्यावहारिक विदेश नीति को आगे भी जारी रखेगा। बैठक में काठमांडू और नई दिल्ली स्थित यूरोपीय संघ के राजदूतों तथा काठमांडू स्थित अन्य देशों के राजदूतों ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए नेपाल की सराहना की। उन्होंने सुशासन, आर्थिक विकास और समृद्धि के जनादेश के साथ नई सरकार का नेतृत्व संभालने पर प्रधानमंत्री शाह को बधाई भी दी। संचार तथा सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने मंत्रालय के अधीन संचार संस्थानों का वार्षिक लेखा परीक्षण जल्द पूरा करने तथा लंबे समय के बकाया राशि की वसूली प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। आज मंत्रालय में उन संस्थानों के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में संचार मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने वर्षों से लंबित लेखा परीक्षण और बकाया प्रबंधन को प्राथमिकता में रखने का निर्देश दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि गोरखापत्र संस्थान और सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल का आर्थिक वर्ष 2079-80 के बाद का लेखा परीक्षण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षण में देरी होने से संस्थागत पारदर्शिता कमजोर होती है, आर्थिक गतिविधियों पर प्रश्न उठते हैं तथा सार्वजनिक संस्थानों पर लोगों का विश्वास प्रभावित होता है। संचार मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने बकाया रकम की वसूली के लिए स्पष्ट कार्ययोजना बनाने, आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा नियमित अनुगमन करने का भी निर्देश दिया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने विदेश में रह रहे नेपाली नागरिकों से मोफा मित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से कौंसुलर सेवा लेने का आग्रह किया है। आज कौंसुलर सेवा विभाग द्वारा आयोजित मोफा मित्र मोबाइल ऐप शुभारंभ कार्यक्रम में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये ऐप सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सरल और नागरिक मैत्री बनाने में प्रभावी साबित होगा। मंत्री खराल ने बताया कि ये सेवा देश के सभी 77 जिला प्रशासन कार्यालयों तथा विदेश स्थित सभी नेपाली कूटनीतिक नियोगों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष में इस सेवा को सभी स्थानीय तहों तक विस्तार करने की योजना है। मोफा मित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन आवेदन देने की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने सर्पदंश से बचने की अपील की है। गर्मी बढ़ने के साथ सांप बिलों से बाहर निकलकर लोगों को काटने लगते हैं, इसलिए मंत्रालय ने सतर्क रहने का आग्रह किया है। शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल के निदेशक डॉ. अनूप बास्तोला ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ अस्पताल में सर्पदंश के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने जानकारी दी कि काभरे, धादिंग, तनहू, रामेछाप और दोलखा सहित विभिन्न जिलों से सर्पदंश के अधिक मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉ. बास्तोला ने कहा कि सांप काटने पर प्रभावित हिस्से को बिना हिलाए स्थिर रखना चाहिए। उन्होंने सर्पदंश वाली जगह को काटने, चूसने या बांधने जैसी गतिविधियां न करने, किसी भी प्रकार का मलहम, रासायनिक पदार्थ, गर्म या ठंडी चीजों का प्रयोग न करने, सांप की पहचान करने तथा मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की अपील की है। नेपाल पुलिस ने वैदेशिक रोजगार के नाम पर विभिन्न देशों में भेजने का झांसा देकर आम लोगों से करोड़ों रुपए ठगी करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर आज साझा किया है। उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रवक्ता एसपी रामेश्वर कार्की ने जानकारी दी कि पीड़ितों की शिकायत के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शिकायत में कहा गया था कि आरोपियों ने 2,40,00,000 रुपए से अधिक रकम वसूलने के बाद संपर्क तोड़ दिया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसा आज अजयगढ़ विकासखंड के बिहार पूर्वा ग्राम पंचायत के नया पूर्वा गांव में हुआ। पन्ना जिला प्रशासन के जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जारी जानकारी में कहा गया है कि ग्राम पंचायत की ओर से कुएं का निर्माण कराया जा रहा था। प्रशासन के अनुसार हादसे में दो लोग सुरक्षित बाहर निकल आए जबकि पांच लोगों की मौत हुई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री से संसद में उठे प्रश्नों का जवाब देने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने आज भी सदन की कार्यवाही की बाधित। प्रधानमंत्री जल्द ही संसद में उपस्थित होकर जवाब देने की बात की सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सांसदों को दी जानकारी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ की सामूहिक चर्चा। नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री का कथन। और भारत मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक निर्माण कुएं की मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।